मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
हैं। फोन से रास्ता करते, 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चिया को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज। प्रोग्राम आप सुनेंगे, जैसे कि खालिद साहब ने भी कहा आपसे थोड़ी देर बाद, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा, आप इसे पहले भी सुन चुके हैं और यकीनन ऐसा प्रोग्राम है कि आप इसे दोबारा सुनें तब भी आप खुश होंगे इस प्रोग्राम को सुन के। वजह आज नया प्रोग्राम पेश करने की ये है कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 2 दिन से हमारे यहाँ जो रिकॉर्डिंग वगैरह का सिलसिला खासा ख़राब रहा और इसकी वजह से नई कहानियाँ हमारी रिकॉर्ड नहीं हो सकें। तो बहरहाल आइंदा हफ्ते हम आपको बहुत ही अच्छी, वादा रहा, बहुत अच्छी सी नई कहानियाँ सुनाएंगे। इस हफ्ते सुनते हैं एक प्रोग्राम जिसमें एक मरकज़ी कहानी जो है वो श्रीनगर कश्मीर से, बल्कि कश्मीर के एक और गांव से, श्रीनगर करीब, हमें नासिर नदीम ने भेजी थी। इस कहानी प्रोग्राम को पेश करने में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वो साथी जो कि कभी कभार प्रोग्राम में आते हैं मेरे साथ, कभी गायब हो जाते हैं, यानी इमरान। तो लीजिए हम अपना वो पुराना प्रोग्राम सुनते हैं। मेरी कहानी।
आपा, ये क्या हुआ, कुछ तो कहिए, मैं कुछ कहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम आप सबको।
मैं तो तुमसे कह रही थी इमरान की कुछ तो कहिए।
सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपा आपका। मगर ये प्रोग्राम का नाम है, जैसा कि आपने सुना, कुछ तो कहिए नहीं बल्कि आवाज दोस्त मेरी कहानी।
बिल्कुल भाई। और ये जो एक हमारा साथी है मेजबान,
देख वैसे ही आपका शो भी शानदार गुजरा लास्ट टाइम भी, और इस दफा भी जैम पैक शो है आपका।
नहीं मगर 4 चांद नहीं थे ना, 3 चांद।
आज आपने 4 चांद लगा दिए इस शो में।
अच्छा, लेकिन अभी बताइएगा नहीं, सरप्राइज
है। जो मैं चैलेंज सही, अगर आप मुझे जबरदस्ती आप रोक रही हैं तो मैं रुक जाता हूं। ठीक है,
इसीलिए बाद में बताएंगे ना।
चलें ठीक है। मगर ये जो आप काम करने वाली हैं, अगेन बड़ा जबरदस्त काम है।
तो कुछ में देर लगेगी। और हमारे साथ इस वक्त हैं सैयद नासिर नदीम, जो शोपियान कश्मीर से, भारतीय कश्मीर से हमारे साथ हैं। जी नासिर नदीम साहब, नासिर नदीम साहब को आवाज आ रही है हमारी?
जी जी जी, अच्छी तरह से आवाज आ रही है।
जी अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, मेरे और इमरान की तरफ से।
अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक है,
बिल्कुल ठीक ठाक। और आपकी कहानी हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद आपसे कुछ बातें भी करेंगे, कुछ हमें बताइएगा अपने प्यारे से गांव के बारे में। और जी, लेकिन जी, पहले सुनते हैं आपके गाँव का नाम क्या है?
बस कहानी, गाँव का मानदजन।
मानदजन, अच्छा
जी, मानदजन
जी। तो हमारे नासिर नदीम साहब, सैयद नासिर नदीम साहब ने कहानी भेजी है, लीजिए कहानी सुनते हैं।
मेरा नाम सैयद नासिर अहमद नदीम है, दरस तदरीस मेरा पेशा है। मेरे गांवों का नाम मानदजन है, जो जिला शोपियान कश्मीर का एक दूर उफ्तादा और पसमानदा गांव है। मैं अपनी जिंदगी का सिर्फ एक वाकया जीवित करसात करता हूँ। आज से 27 साल पहले की बात है, मैं अपनी छोटी बहन अमतुल बासित के इलाज मुआलजा के सिलसिले में शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा श्रीनगर में था। मेरी बहन ब्लड कैंसर जैसे मौजी मरज में मुबतला थी। अल्लाह तला ने महज अपने फजल करम और बुजुर्गों की दुआओं के तुफैल उसे शिफा बख्शी। बाद में उसकी शादी हो गई और अब वो 2 जवान बेटियों की माँ है। बीमारी की नवियत के पेश नजर हमें लंबे लंबे उर्से तक अस्पताल में रहना पड़ता था। जनवरी 1985 की बात है, बहन को अस्पताल में दाखिल हुए 40 दिन गुजर चुके थे। शदीद सर्दी और बर्फबारी का मौसम था। हम चूंकि एक दूर उफ्तादा बालाई इलाका के रहने वाले हैं, इस मौसम में 10-15 दिनों के बाद ही घर से कोई खबरगिरी के लिए आता था। बहन को इंजेक्शनों का एक और कोर्स देना था और इस पर एक माकूल रकम खर्च होती थी। जाहिर है कि एक तवील उर्से तक अस्पताल में रहने की वजह से मेरे पास खर्चे के लिए सिर्फ 200-300 रुपए ही बचे थे। बड़े डॉक्टर साहब ने अपने मामूल के राउंड के दौरान मरीज का मुआयना करते हुए और टेस्ट रिपोर्ट देख कर बताया कि कल फिर कोर्स देना पड़ेगा। डॉक्टर साहबान तो राउंड जारी रखे हुए अगले मरीजों के मायने के लिए आगे बढ़े और मैं हैरान और पशीमान, कभी अपनी कमजोर नातवा बहन के चेहरे को तकता और कभी सोचूं ही सोचूं मैं अपनी जेब में मौजूद हकीर सी रकम को गिनता। घर के हालात भी नागुफ्ता बैठे और आज की तरह मोबाइल और फोन सिस्टम भी न था। शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव और परेशानी और पशेमानी के असरात को मसीहा सिफत और दर्द आशना डॉक्टर ने भाप लिया था। تبھی دوسرے دن صبح 10 بجے ہی ڈاکٹر صاحب موصوف نے مجھے ہیمٹالوجی لیب کے مقابل پر اپنے کمرے میں بلایا. میں پریشان حال سوچوں میں گم ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تو انتہائی ملائمت اور نرمی سے ہمدردانہ لہجے میں مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹے تم لوگوں نے اپنی بہن کے لیے کافی کچھ کیا ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہ کورس بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے تم لوگوں کی نیند ضائع ہو جائے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے گھر سے پچھلے کئی دنوں سے کوئی آیا نہیں ہے اور تمہارے پاس خرچہ بھی ختم ہو چکا ہوگا, لیکن یہ انجیکشن بہرحال لگنے ہیں اور علاج جاری رکھنا ہے. یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر رقم نکالی اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور فوراً انجیکشنوں کا انتظام کرو. میں نے انتہائی ممنونیت اور احساس تشکر کے ساتھ رقم ہاتھ میں لی اور اسے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا اپنی بہن کی زندگی کے لیے آب حیات سمجھ کر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور تیز تیز قدموں سے بازار کی طرف دوائیاں خریدنے چلا. یہ فرشتہ صفت ہمدرد اور مخلص ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر رمیش پنڈتا, جو ان دنوں شاید انسٹیٹیوٹ میں ہیمٹالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے اور پروفیسر ڈاکٹر امائے قادری کے بیرون ملک جانے کی وجہ سے ان کے قائم مقام تھے. اس کے بعد وادی میں ملٹنسی کا دور شروع ہوا اور اس پورا اشوک دور میں ڈاکٹر رمیش پنڈتا جیسے کتنے ہی نئے لوگ وادی سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور یوں ہم مخلص ہمدرد اور لائق فائق ماہرین سے محروم ہو گئے. یہ صرف میری ہی بات نہیں, ڈاکٹر صاحب موصوف کا رویہ ہر ایک کے ساتھ, خاص طور پر بیماروں کے ساتھ, ایسا ہی ہمدردانہ اور مصفقانہ ہوتا تھا. اسی دور کی بات ہے, کنیکٹل سری نگر کے محمد صدیق واضح نامی ایک نئے بلڈ کینسر مریض کو وارڈ میں ایڈمٹ کیا گیا. بظاہر باری برکم تنو مند اور پہلوان ٹائپ کے آدمی تھے. کئی روز تک انجیکشن اور گلوکوز چڑھاتے چڑھاتے ان کے بائیں بازو کی حالت سوج کر بری ہوئی تھی اور اب وین سیٹ لگا